युग संचार के अंतर्गत वार्ता मुद्रण कला ज्ञान विचार संप्रेषण का विराट माध्यम। लेखक कृष्णकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। श्रोताओं, हमें याद आता है कभी विश्व प्रसिद्ध महान लेखक विक्टर ह्यूगो ने मुद्रण कला का आभार स्वीकार करते हुए उसका बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिनंदन किया था। उन्होंने तब यही कहा था, मुद्रण कला का आविष्कार इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। वो यानी मुद्रण कला का आविष्कार समस्त क्रांतियों का जनक है। मुद्रित विचार शाश्वत हो जाते हैं, जैसे उन्हें अस्पृश्य अविनश्वर पंख लग जाते हैं। वे पक्षियों के झुंड की तरह उड़ान भरते हैं और एक साथ चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। वर्षों पहले महान लेखक विक्टर ह्यूगो ने मुद्रण कला के विषय में जो सही विचार व्यक्त किए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो उनके अपने उस युग में थे। यह भी कहा जाता है, आज से सैकड़ों वर्ष पहले चीन में मुद्रण कला ने विकास पाया था, लेकिन मुद्रण कला ने जो नया रूप पाया और उसने वर्तमान युग तक का जो सफर तय किया, उसका इतिहास सही रूप में आज से 550 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था, और वो भी जर्मनी से। जर्मनी में कोई 2000 साल पुराना एक शहर है जिसका नाम है माइंस। ये माइंस नगर यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी राइन के किनारे बसा हुआ है। मुद्रण कला ने नया रूप इसी शहर नगर से पाया था, यानी जिसने इसे आविष्कृत किया वो व्यक्तित्व इसी नगर का निवासी था और उसका नाम था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म इसी माइंस शहर के एक प्रतिष्ठित सामंती परिवार में हुआ था। उस युग में जर्मनी का ये माइंस शहर जिस मार्ग पर बसा था वो प्रसिद्ध जनमार्ग तो था ही, जहां की हर दिशा से लोग आते जाते थे। इस कारण ये नगर व्यापारिक नगर के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका था। तब इस नगर को सुनहरा माइंस कहा जाने लगा। भले ही इस नगर का निवासी गुटेनबर्ग एक सामंत घराने में जन्मा हो, लेकिन उसकी रुचि स्वर्ण आभूषण निर्माण की ओर अधिक थी, इसलिए उसने स्वर्णकार पेशे को अपनाया। लेकिन उसके लिए यह पेशा नहीं बल्कि एक महान कला थी। उसमें भी उसने विभिन्न और नए प्रयोग किए और उसमें भी पूरी तरह महारत हासिल की। उसमें भी उसने अपने तरीके से नए आयाम नए रूप दिए। तब गुटेनबर्ग की उस स्वर्ण कला ने कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि गुटेनबर्ग की स्वर्ण आभूषण गढ़ने की कुशलता तथा धातु पर अक्षरों को उकेरने की कला ने ही आगे चलकर सीसे में ढाले जाने वाले अक्षरों को जन्म दिया। यह करके गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला में एक नई नींव रखी, उसे नया रूपाकार देने का शुभारंभ किया। किसी ने इस विषय में कितना सच कहा था, गुटेनबर्ग ने सीसे के जादू से जो अक्षर गढ़े उन्हें विश्व ने सोने हीरे जवाहरात से भी अधिक माना। अगर हम उस जमाने की यानी आज से 550-600 वर्ष पुराने जमाने पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे वो जमाना विश्व के लिए अपने आप में निश्चित ही क्रांतिकारी युग था। उस समय खासकर यूरोप में न केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही नई से नई वस्तुएं दाखिल हो रही थीं, बल्कि नए नए विचार जन्म ले रहे थे। लोगों में ज्ञान पिपासा भी उसी तरह विस्तार पा रही थी। तब पेरिस, प्राग, बोलोना, वियना, हेडलबर्ग और एटफुर्ट आदि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसे तब एक महान परिवर्तन के रूप में स्वीकारा जा रहा था। इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के बीच गुटेनबर्ग ने पिछले सीसे से ढाले गए अक्षरों और उनके द्वारा मुद्रण करने का सफल प्रयोग प्रारंभ किया। यही नहीं, उसे उसमें सहज सफलता प्राप्त भी हो गई हो, इससे पहले उसने कई कई परीक्षण भी किए। तब कहीं जाकर उसे उसमें सफलता हासिल हुई। इस विषय में यह भी कहा जा सकता है, इस संदर्भ में एक बार गुटेनबर्ग माइंस शहर के एक अमीर व्यवसायी योहान फुस्ट के पास गया। उसने फुस्ट को मुद्रण संबंधी अपने नए साजो सामान दिखाए, जिनसे कि पुस्तकों की छपाई बहुत सुगम तरीके से संपन्न की जा सकती थी। लेकिन ऐसी पुस्तकें छापने के लिए गुटेनबर्ग को धन की आवश्यकता थी। योहान फुस्ट ने उसे बहुत सोच समझकर विशेष शर्तों के साथ कुछ धन दिया। सन 1450 से सन 1452 अर्थात इन दो वर्षों के मध्य गुटेनबर्ग ने अपना छापाखाना तैयार कर लिया। इसके लिए उसने पेरिस विश्वविद्यालय से एक कातिब यानी किताब का लेखन करने वाले व्यक्ति को अपना सहायक बनाया। इसके अलावा उसने अपने छापेखाने में अक्षर ढालने वाले कारीगर और मुद्रक यानी छापने वाले नियुक्त किए। अब गुटेनबर्ग का छापाखाना छपाई के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने विचार किया सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ छापा जाए तथा प्रकाशित किया जाए, और उसने निश्चय किया अपने छापेखाने जो प्रथम ग्रंथ प्रकाशित कर रहे थे उसमें सबसे पहले होगी पवित्र बाइबल, और उसने 42 भागों वाली वृहताकार बाइबल का प्रकाशन किया और उसी से मुद्रण कला के नए अध्याय का आरंभ हुआ। लेकिन कहते भी हैं कि महान कामों की बाधाएं भी बड़ी बड़ी होती हैं। इसी तरह गुटेनबर्ग और व्यवसायी योहान के बीच कुछ समय बाद मतभेद प्रारंभ हो गए और गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित वह छापाखाना योहान के अधिकार में चला गया। आगे इस नई मुद्रण कला के आविष्कारक का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन मुद्रण कला के प्रारंभ की उसकी परिकल्पना और साहस अभूतपूर्व थे। उसके विषय में एक विद्वान मिर्जा मुहर्रम ने कहा था, हे गुटेनबर्ग, तुम्हारे हाथों विज्ञान कुसुम खिल रहे हैं, तुम्हारी दिव्य चेतना से ज्ञान ज्योति सुलग उठी और रंक की कुटिया से लेकर राजा के महल तक सब जगह आलोक फैलाने लगी। इतिहास गवाह है, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण कला में महत क्रांति के बाद उसे विश्वव्यापी होने में कोई बहुत अधिक समय नहीं लगा। 50 वर्ष व्यतीत होते न होते यानी 1500 ईस्वी तक मात्र यूरोप के 260 शहरों में कोई 40,000 भिन्न भिन्न पुस्तकों की लगभग 1 करोड़ प्रतियां प्रकाशित हुईं। इसके बाद इस कला का व्यापक विस्तार होना ही था। आज मुद्रण कला ने जो विश्व स्तर पर विस्तार पाया है, धीरे धीरे विज्ञान ने उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो सुगमता दी, जो रंगीनी दी, उसने तो गजब ही कर दिया है। भले ही वर्तमान में सूचना संचार तंत्र ने जितना अधिक विस्तार पाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसमें जो भूमिका निभाई वो भी अपनी जगह है, लेकिन प्रिंट मीडिया का महत्व आज भी जस का तस है। आज हर कहीं हर वर्ष करोड़ों की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। समाचार पत्र तथा अन्य पत्र पत्रिकाएं भी लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। इस दिशा में विश्व में कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्ञान, मनोरंजन, सूचना, समाचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन दूनी रात चौगुनी गति से विस्तार पा रहा है, लेकिन मुद्रण कला वाला ये प्रिंट मीडिया भी उसी गति से अपना फैलाव कर रहा है, भले ही इसकी सही नींव 550 साल पहले रखी गई हो। अब उसी नींव पर एक बहुत विस्तार वाला विशाल और सुदृढ़ भवन स्थापित है, जिससे ज्ञान, विचार, सूचना, समाचार सब कुछ ये मानव जाति पाती जा रही है। इसके लिए ये विश्व गुटेनबर्ग का सदैव आभारी रहेगा।